अनिवार्य ओपनिंग नरेशन, अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। अनिवार्य ओपनिंग नरेशन, ऑडियो शुरू।
ग्रंथसार में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की बात करने वाले हैं जिसने आते ही काफी तहलका मचा दिया था।
हाँ,
क्रिस्टीना श्वार्ट्ज का पहला उपन्यास ड्राउनिंग रूथ ये साल 2000 में आया था।
बिल्कुल, और ये सिर्फ बेस्ट सेलर ही नहीं रहा है ना, ओपरा के बुक क्लब में आने के बाद तो काफी मशहूर हो गया था।
हाँ,
और कृष्णा श्वार्ट्ज, क्योंकि वो खुद मिडवेस्ट से हैं,
हाँ,
तो वो विस्कॉन्सिन का जो माहौल है, खासकर वो झीलें,
हाँ,
उसको उन्होंने बड़ी खूबी से उतारा है कहानी में।
सही कहा। और शायद उनका जो बैकग्राउंड है, हाई स्कूल इंग्लिश टीचर थी वो,
हाँ,
उसका असर दिखता है किरदारों की साइकोलॉजी में, उनकी जटिलताओं में। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, पूरी कहानी देखेंगे, उलझे हुए पात्रों को समझेंगे और वो सवाल जो ये उठाता है, झूठ, यादें, रिश्ते, इन सब के बारे में।
हाँ, सिर्फ समरी नहीं बल्कि इसके लिटरेरी पहलू और असर पे भी थोड़ी बात होगी।
बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं नागावीका झील के उन बर्फीले रहस्यों की तरफ।
तो कहानी हमें ले जाती है 1919 के विस्कॉन्सिन। माहौल थोड़ा अनिश्चित सा है, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है, स्पैनिश फ्लू का डर अभी भी है।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था।
इसी माहौल में अमेंडा स्टार्की, एक नौजवान लड़की जो शहर में नर्स थी, अचानक अपने घर लौटती है। उनका फार्म हाउस नागावा की झील के पास है, बिल्कुल अलग थलग।
घर पर कौन कौन है तब?
घर पर उसकी बड़ी बहन है मथिल्डा, जिसे मैटी कहते हैं। मैटी का पति कार्ल न्यूमन, वो किसान है, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है रूथ।
अच्छा, और अमेंडा क्यों लौटती है?
वो तो कहती है कि बीमार थी, ठीक होने आई है, लेकिन घर में आते ही ना एक अजीब सा एक तनाव महसूस होता है, खामोशी सी।
और वो झील, उसका जिक्र आपने किया।
हाँ, वो झील तो जैसे बैकग्राउंड में हमेशा है, जमी हुई, शांत, सुंदर, पर खतरनाक भी, जैसे राज छुपाए हुए। और ये राज ज्यादा दिन छुपते नहीं। अमांडा के आने के कुछ ही दिन बाद एक हादसा हो जाता है।
क्या होता है?
मैटी, वो झील की पतली बर्फ पर चली जाती है और डूब जाती है। और अचानक अमांडा अपनी भांजी रूथ की अकेली गार्डियन बन जाती है।
लेकिन क्या ये सिर्फ हादसा था? यहीं से शायद सवाल शुरू होते हैं।
बिल्कुल यहीं से उपन्यास का जो केंद्रीय रहस्य है वो सामने आता है। मैटी की मौत कैसे हुई? क्या ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था, या कुछ और?
और अमांडा का बर्ताव इस शक को और बढ़ाता होगा।
हाँ बिल्कुल, वो रूथ को लेकर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। उसे पानी के पास नहीं जाने देते।
पानी से डर बिठा देती है मन में।
हाँ, और उसका अपने जीजा कार्ल के साथ भी रिश्ता कुछ अजीब सा, खिंचा खिंचा सा रहता है। लगता है जैसे वो कुछ कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है।
तले दबी है
कार्ल, जो पत्नी की मौत के सदमे में है, कंफ्यूज्ड है।
और रूथ, वो बेचारी बच्ची जो इस सब के बीच में है, जिसे कुछ पता नहीं कि असल में हुआ क्या था।
हाँ, उनकी जिंदगियां दुख, शक और सच की तलाश में उलझ जाती हैं।
चलिए अमेंडा के किरदार को थोड़ा और समझते हैं। वो इस कहानी की जैसे धुरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है।
हाँ, वो शहर में नर्स थी, पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों वाली, फिर फार्म लाइफ की बंदिशों में लौटती है।
और लौटने की असली वजह वो बीमारी नहीं थी जैसा आपने बताया?
नहीं, असली वजह थी उसकी अनचाही प्रेगनेंसी। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता।
बिल्कुल, तो ये राज उसके पूरे वजूद को, उसके व्यवहार को तय करता है।
हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है, शायद थोड़ी कठोर भी। उसका एक ही मकसद बन जाता है, ये राज छुपाना हर कीमत पर।
लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध तो होगा, डर भी।
जरूर, वो गिल्ट और पकड़े जाने का डर उसे अंदर से खाता रहता है। और रूथ के लिए उसका प्यार भी इसी डर से लिपटा हुआ है। वो प्यार एक तरह के कंट्रोल में बदल जाता है,
दम घोटू प्यार।
हाँ, जैसे वो रूथ को दुनिया से, सच्चाई से बचाने के लिए एक जेल बना रही हो, खुद अपने लिए भी और रूथ के लिए भी।
दिलचस्प बात यह है कि कहानी आगे बढ़ने पर वो बदलती नहीं, बेहतर नहीं होती, बल्कि वो अपने झूठ को बचाने में और पक्की हो जाती है।
सही कहा, उसका कैरेक्टर आर्क एक तरह से नीचे की तरफ जाता है। वो अतीत की कैदी बन जाती है। विलेन तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक ट्रेजिक फिगर जरूर है।
अब रूथ की बात करते हैं, कहानी की मासूमियत।
हाँ, वो शुरू में एक डरी हुई बच्ची है। अमांडा ने उसके मन में पानी का डर इतना गहरा बिठा दिया है, उसे हमेशा लगता है जैसे वो कहीं फिट नहीं होती,
एक अजनबी अपनी ही जिंदगी में।
बिल्कुल, उसकी दुनिया अमांडा के कंट्रोल में बहुत सीमित है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, सवाल उठने लगते हैं उसके मन में।
और यहीं से उसका सफर शुरू होता है, निष्क्रिय शिकार से सच की खोज करने वाले।
सही,
वो पुरानी बातों, लोगों की फुसफुसाहटों, अमांडा की कहानियों में जो गैप्स हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है।
ये उसकी अपनी पहचान को खोजने की लड़ाई है। वो कौन है, उसका अतीत क्या है,
और इस खोज में काल का रोल अहम हो जाता है।
हाँ, काल जो खुद अमांडा के बर्ताव से कहीं ना कहीं परेशान है।
वो रूथ को वो स्पेस देता है, वो प्यार देता है जो उसे अमांडा से नहीं मिलता। काल का जो सीधा साधा प्यार है वो रूथ के लिए जैसे एक लाइफलाइन बन जाता है।
अमांडा के बनाई दीवार से बाहर देखने का एक रास्ता।
हाँ,
अब मैटी पर आते हैं। उसकी कहानी फ्लैशबैक में खुलती है।
मैटी एकदम पारंपरिक थी, सुंदर, घरेलू, परिवार की इज्जत, समाज के नियम, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखते थे।
उसका सपना एक आइडियल फैमिली लाइफ का था, जो उसने काल के साथ बनाया भी था। वो स्थिरता की प्रतीक थी।
लेकिन जब उसे अमांडा की प्रेगनेंसी का पता चलता है, उसकी दुनिया जैसे बिखर जाती है।
सिर्फ बहन का राज नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत पर दाग।
हाँ, और इसी उथल पुथल के बीच एक और त्रासदी होती है। मेटी की अपनी बच्ची जो रूथ ही थी, अचानक बीमार होकर मर जाती है।
ओह, ये तो बहुत दुखद है।
और वो इतनी टूट जाती है कि काल को बताए बिना ही उसे चुपचाप दफना देती है। ये सारे सदमे उसे अंदर से पूरी तरह हिला देते हैं।
और शायद यही वजह है कि वो उस रात झील पर जाती है।
हाँ, शायद उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अमांडा की नवजात बच्ची को उठाती है और झील पर चली जाती है।
किस इरादे से?
शायद एक बिगड़े हुए दिमाग में वो इसे पाप धोने का, शुद्धिकरण का एक भयानक तरीका समझ रही थी।
और मैटी का ये कदम ही कहानी को मोड़ देता है।
बिल्कुल, ये कहानी का उत्प्रेरक है।
और कार्ल, उसका क्या रोल है इस सब में?
काल तो जैसे अच्छाई, स्थिरता का प्रतीक है। जमीन से जुड़ा हुआ मेहनती किसान,
अपनी पत्नी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करने वाला।
हाँ, मैटी की मौत के बाद वो बिल्कुल खो जाता है। समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसका दुख बहुत असली लगता है।
शुरू में तो वो बस रूथ का अच्छा पिता बनना चाहता है, मैटी की याद को बनाए रखना चाहता है।
लेकिन अमांडा उसे रूथ से दूर रखती है, है ना?
हाँ, एक दूरी बनाए रखती है। और धीरे धीरे काल के मन में भी शक पनपने लगता है।
उसके मन में अमांडा के लिए एहसान भी है, क्योंकि वो रूथ को पाल रही है, लेकिन उसे वो कंट्रोल पसंद नहीं आता।
तो वो भी बदलता है। दुख में डूबे रहने की बजाय सवाल पूछने लगता है।
हाँ, खासकर जब वो रूथ की आंखों में वही उलझन देखता है जो वो खुद महसूस कर रहा है।
अब आते हैं कहानी के खुलासे पर। आपने बताया कि कहानी सीधी नहीं चलती है।
हाँ, नॉन लीनियर नैरेटिव है। अतीत और वर्तमान के बीच कहानी चलती रहती है। ये दर्दनाक यादों के काम करने का तरीके जैसा है। टुकड़ों में सच सामने आता है।
तो धीरे धीरे पता चलता है अमांडा की प्रेगनेंसी के बारे में,
मैटी को सच पता चलने के बारे में, फिर मैटी की अपनी बेटी की मौत और उसका गुप्त दफन, और फिर अमांडा का बच्चे को जन्म देना,
और फिर वो भयानक रात झील पर।
हाँ, वो क्लाइमैक्स है। मैटी अमांडा की बच्ची को लेकर झील पर है, शायद उसे डुबोने के इरादे से। अमांडा पीछे पहुंचती है।
टकराव होता है दोनों बहनों में,
भयानक टकराव, हाथापाई। अमांडा अपनी बच्ची के लिए गिड़गिड़ाती है, और तभी बर्फ टूट जाती है
और मैटी पानी में गिर जाती है।
हाँ, और अमांडा के सामने एक सेकंड में फैसला लेने का वक्त होता है, बहन को बचाए या अपनी बच्ची को जो ठंड से मर सकती है।
वो बच्ची को चुनती है।
और मैटी डूब जाती है।
कितना भयानक चुनाव है ये।
यहीं से वो बड़ा झूठ शुरू होता है। अमांडा सदमे में बच्ची को लेकर घर आती है। जब लोग आते हैं तो वो कहानी गढ़ती है
कि मैटी दुखी थी, झील पर गई और एक्सीडेंट हो गया।
हाँ, और वो नवजात बच्ची, उसे मैटी और काल की बेटी रूथ बता दिया जाता है,
उसी नाम से जो मैटी की मृत बेटी का था।
बिल्कुल, और ये झूठ उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन जाता है।
रूथ का बचपन इसी झूठ के साए में गुजरता है। अमांडा का वो घुटन भरा कंट्रोल, पानी का डर, अकेलापन।
हाँ, ये सब उस अनकहे सच के लक्षण है। लेकिन रूथ की जो जिज्ञासा है वो दबती नहीं,
वो सुराग ढूंढती है।
हाँ, पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में मैटी एक अलग बच्चे के साथ दिखती है। वो लोगों की बातों पर, अमांडा के जवाबों पर गौर करती है। उसे गड़बड़ महसूस होती है।
और फिर क्लाइमैक्स आता है, जब वो सच जानना चाहती है।
हाँ, जब वो किशोरी हो जाती है, वो अमांडा से सीधे भिड़ जाती है, सवाल करती है,
और सच सामने आ जाता है।
हाँ, एक बहुत ही इमोशनल टकराव के बाद पूरा सच सामने आता है कि वो अमांडा की बेटी है, कि मैटी ने उसे मारने की कोशिश की थी, और जिस असली रूथ की जगह वो जी रही है वो तो मर चुकी थी।
ये तो रूथ के लिए अपनी पूरी पहचान का ही सवाल बन गया।
बिल्कुल, उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी पहचान जैसे रेत की तरह ढह जाती है।
और इस सच का असर दूसरों पर, काल पर, अमांडा पर,
सबके लिए विनाशकारी होता है। अमांडा का झूठ का बनाया किला आखिरकार ढह जाता है। काल को पता चलता है कि उसकी असली बेटी तो कब की मर चुकी थी, और ये रूथ अमांडा की है। सब कुछ बिखर जाता है,
जैसे सब सच्चाई के मलबे पर खड़े हैं।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक झूठ को जिंदा रखने की कोशिश में सब कुछ तबाह हो जाता है।
ये कहानी कई गहरे थीम्स को छूती है। सबसे पहले तो यही झूठ और राज का असर।
हाँ, कि वो कैसे धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देते हैं। राज सिर्फ छुपी हुई बातें नहीं, वो एक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है।
और दूसरा थीम मेमोरी का, यादें कितनी भरोसेमंद होती हैं।
बिल्कुल, अमांडा कैसे रूथ की यादों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। ये दिखाता है कि हमारा अतीत भी एक तरह की कहानी है, जिसे हम बनाते हैं या जिसे हमारे लिए बनाया जाता है।
यादें किसी तस्वीर की तरह फिक्स नहीं होती।
नहीं, वो पेंटिंग की तरह होती है जो बदलती रहती है।
और बहन और माँ के रिश्ते, वो भी कितने जटिल दिखाए गए हैं।
हाँ, अमांडा और मैटी के बीच प्यार भी है, वफादारी भी, पर जलन और मुकाबला भी है। और अमांडा का रूथ के लिए प्यार, वो भी असली है, पर डर और गिल्ट से जहरीला हो गया है।
बचाने की कोशिश ही नुकसान पहुंचा देती है। और पहचान की तलाश तो रूथ की कहानी का केंद्र है ही।
हाँ, एक झूठे अतीत पर बनी जिंदगी में अपनी असली पहचान खोजना, सेल्फ डिस्कवरी का संघर्ष।
और इन सब में जगह का, उस माहौल का भी बड़ा रोल है। विस्कॉन्सिन, फार्म, झील।
हाँ, वो अकेलापन किरदारों के अंदर के अकेलेपन और दिखाता है। वो गॉथिक माहौल, ठंड, खामोशी, जमी हुई झील, ये सब किरदारों की भावनाओं का आईना है।
झील तो जैसे जमे हुए जज्बातों का प्रतीक है।
बिल्कुल।
लिखने की शैली की बात करें तो वो नॉन लीनियर नैरेटिव तो है ही।
हाँ, और थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हम ज्यादातर अमांडा और रूथ के मन की बातें जानते हैं, इससे सस्पेंस बनता है,
क्योंकि हमें वो पता है जो शायद कार्ल को नहीं पता।
सही। और अतीत और वर्तमान के बीच जो शिफ्टिंग है, वो दर्दनाक यादों के अचानक उभर आने जैसा है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता।
सिंबलिज्म का भी अच्छा इस्तेमाल है। पानी, झील, बर्फ, डूबना।
हाँ, पानी या झील जिंदगी और मौत दोनों का प्रतीक है, छिपे हुए सच का भी। बर्फ वो नाजुक पर्दा है सच के ऊपर, और डूबना वो भावनाओं में या असलियत में अभिभूत हो जाना है।
और फोरशैडोइंग, क्या शुरू से हिंट्स मिलते हैं?
हाँ, छोटे छोटे सुराग मिलते हैं। रूथ का पानी से डर, अमांडा की कुछ अजीब प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर रहस्य को गाढ़ा करते हैं और पढ़ने वाले को बांधे रखते हैं।
पढ़ने वाले के लिए ये अनुभव कैसा रहता है? आसान तो नहीं लगता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बेचैन करने वाला अनुभव है। अमांडा के लिए सहानुभूति भी होती है और डर भी लगता है। रूथ के लिए दिल दुखता है। ये कहानी आपको हिला देती है।
और ये क्या छाप छोड़ जाती है आखिर में?
शायद ये कि कैसे एक फैसला, एक झूठ कितने लंबे समय तक असर डाल सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा झूठ से बेहतर होता है, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो।
पारिवारिक रहस्यों का बोझ और अपनी पहचान जानने की जरूरत।
हाँ, वो लाइन है ना कि हम जीने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं, पर कभी कभी वही कहानियां हमारी जेल बन जाती हैं।
बहुत खूब कहा। तो अंत में ये कहानी शायद यही सिखाती है कि सुरक्षा या इज्जत बचाने के नाम पर बोले गए झूठ भी आखिर में एक ऐसी दर्दनाक हकीकत बना देते हैं जिससे बच पाना मुश्किल हो जाता है।
और शायद ये भी कि खुद को पूरी तरह जानने और घावों को भरने के लिए हमें अपने अतीत की मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो सफर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।